महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवल विख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार को देखते हुए चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 36 पर हम आ गए, 36। कल से हमारी जो काल की प्ररूपणा है उसमें जघन्य अनुभाग बंध का एक जीव की अपेक्षा काल कितना हो सकता है, लगातार जघन्य कितना और उत्कृष्ट कितना, यानी मिनिमम कितने काल तक जघन्य जघन्य रह सकता है और मैक्सिमम कितने काल तक जघन्य जघन्य रह सकता है। तो जो प्रकृति करण लब्धि के अंत में जिसका जघन्य होता है, जैसे ज्ञानावरणादि का यानी चार घाती का जघन्य कहाँ होता है, तो क्षपक अपने अपने बंध विच्छेद के समय, और गोत्र कर्म का होता है सातवें नरक में सम्यक के सन्मुख वाले, तो वो करण परिणाम है, तो एक ही समय के लिए जघन्य होगा, अन्यथा वो तो दो समय अन्यत्र जैसे चार समय होता है वैसे यहाँ नहीं होगा। और जो मध्यम परिणाम हुए जहाँ जघन्य होता है, वेदीय का है, नाम का है, आयु का भी है, तो एक समय से लेकर चार समय तक जघन्य रह सकता है। हाँ, अपन जघन्य अनुभाग कितने समय तक बन सकते, चार समय तक। और अजगन्य आयु के लिए अजगन्य का कितने, चार समय तक जगन्य ना, तो बीच में अजगन्य भी हो सकते हैं, तो एक समय भी अजगन्य होगा आयु का। और उत्कृष्ट अंतर्मूल, क्योंकि अंतर्मूल तक तो आयु बनती है। और जैसे हमने वो चार घाती का लिया, जगन्य कहाँ है, क्षपक के अंत में। अरे वाह, ये देना अच्छा है, आपने बोला इसलिए आ गए। चश्मा है पीछे, नहीं पांचवी पुस्तक लगेगी तो दे दूंगी मैं, यहाँ से ऐसे तो नहीं लगेगी। हम जघन्य का प्रकरण देख रहे थे, चार घाती कर्मों का जघन्य क्षपक में होता है, तो तब जघन्य है। तो अजघन्य कब होगा, तो आधा जिसे अजघन्य ही है, तो उसमें तीन भंग पड़ते हैं, अनादि अनंत, किसमें, अभव्यों में, अनादि शांत भव्यों में, सादि शांत भी भव्यों में ही होगा, क्योंकि सादि शांत कब हो सकता है, उपशम श्रेणी उतरी और फिर दोबारा श्रेणी चढ़ी, उपशम श्रेणी चढ़े या चपक चढ़े, तो कहते वो मिनिमम अंतर्मूर्त मैक्सिमम अर्ध पुद्गल पर आए अजघन्य का सादि शांत काल। वेदी नाम में वो तो उसका जघन्य कब होता है, वेदिनी और नाम का मध्यम परिणाम, तो मध्यम परिणाम में तो लौट लौट कर आता है, तो अजघन्य का एक समय है, कहीं पर भी दो बीच, दो जघन्य के बीच में अजघन्य हो सकता है। और अजघन्य का उत्कृष्ट काल कितना है, तो असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि इतने काल के बाद यानी परिणाम जो हम कहते ना परावर्तन, उसका परिणामों का तो असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध के अध्यवसान स्थान है, तो नियम से इतने काल के बाद वो लौट कर वो जघन्य करेगा ही करेगा।
एक जीव की बात है ना,
एक ही जीव की बात, एक ही जीव की बात। तो उत्कृष्ट काल अजघन्य का असंख्यात लोक है।
एक को भी जघन्य हो सकता है।
हाँ, मध्यम परिणाम कहीं पर भी हो सकता है, बोले एक इंद्रिय में इतने लंबे काल आप कहेंगे, जैसे उत्कृष्ट हमने क्या कहा देखा था, उत्कृष्ट पंच इंद्रिय में होता है और उसका अनुत्कृष्ट एक इंद्रिय में अनंत काल वो चला जाएगा तो अनुत्कृष्ट होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। वेदिनी नाम का जघन्य परिणाम मध्यम परिणाम में उसका जघन्य अनुभाग होता है, जघन्य परिणाम में जघन्य अनुभाग बंध मध्यम परिणाम में होता है, वो किसी भी जीव को हो सकता है, परंतु असंख्यात लोग काल के बाद लौट कर वो परिणाम होगा ही होगा, ये बात कठित होती है। और जघन्य का मैक्सिमम काल यानी उसका अर्थ क्या है, इतने काल के बाद जघन्य होगा ही होगा, केवल वेदिनी नाम के लिए।
सबके लिए ऐसा है, कोई भी जीव देवगति का हो के ये इतना असंख्यात लोग प्रमाण,
देवगति का इसमें काल तक वहाँ रहेगा ही नहीं ना, वहाँ तो पूरी लाइफ टाइम तक उसका अजघन्य रह सकता है, उसने जघन्य किया ही नहीं, अन्य अन्य परिणाम किए इस तरह से। देखो अभी हम आयु की बात आदे दिखी थी, आयु का अजघन्य तो अंतर्मूर्ति ही रहता है, ये तो हमने ओघ में देखा था, कल ही देखा था हमने। अब यहाँ हमारी मार्गणा 36 पेज पर मार्गणाओं में नारकियों में देखने जा रहे हैं, गति मार्गणा की अपेक्षा नारकियों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का। अब चार घाती कर्मों का जघन्य कहाँ होगा, तो विशुद्धि में होगा। अब नारकी मार्गणा है हाँ, तो कहाँ पर होगा, चौथे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान समय दृष्टि के होगा। तो चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, मध्यम परिणाम है तो चार समय। कोई भी नारकी विशेष चौथे गुणस्थान वाला, वो निज गोत्र का जघन्य करने के लिए वो सातवें नरक का नारकी हुआ। अब यहाँ कहते चार घाती की बात है तो विशुद्ध कहा है, तो चौथे गुणस्थान वाले के सर्व विशुद्ध वाला, वो तो हमने स्वामित्व देखा, पर वो एक समय या दो समय तक हो सकता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, दो जघन्य के बीच या जघन्य किया फिर अजघन्य किया और मर गया तो भी हो सकता है। और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यानी उसने थ्रू आउट जघन्य किया ही नहीं, क्योंकि जघन्य तो समय दृष्टि का है, ये तो मिथ्या दृष्टि रहा थ्रू आउट। ये सामान्य नारकियों में 33 अगर कहेंगे, एक एक नर के बाद अपनी अपनी स्थिति कहेंगे। फिर से पूरा प्रश्न दोबारा
परावर्तन में नीच गोत्र का जघन्य तो नारकी को होता है, तो वहाँ पे कोई जीव ऐसा भी होगा कि जो सातवें नरक में जाएगा नहीं, तो उतने बड़े काल तक वो घूमता ही रहेगा भाव परावर्तन के तरीका, तो एक भाव परावर्तन में क्या अनंत खुद का परावर्तन हो जाता है।
उसके भाव परावर्तन है, हम कर्म की बंध की बात नहीं कर रहे,
वहाँ पे
भाव परावर्तन में जाते ही जाते, अनंत अन्य परावर्तन तो जाते ही जाते,
भाव परावर्तन में
अनंत भाव परावर्तन जाते है। उनका प्रश्न है गोत्र कर्म का जघन्य कब कहाँ करेगा, तो सातवें नरक का नारकी सम्यक्त्व के सम्मुख वाला, पर सम्यक्त्व के सम्मुख हो जाएगा तो भव्य ही होना चाहिए, आप कहेंगे अभव्य करेगा ही नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं करें। अभव्य उतनी विशुद्धि कर सकता है कि नहीं कर सकता, गोत्र कर्म का जघन्य नहीं बांधा, पर उसकी विशुद्धि होगी कि नहीं अन्यत्र, गोत्र कर्म का मध्यम में नहीं, अभी यहाँ नहीं है, अन्यत्र है, सातवें नरक के नारकी को छोड़कर अन्यत्र जग मध्यम परिणाम में होता है, पर उसके उसके योग्य अभव्य के योग्य उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होगी कि नहीं होगी, ये मेरा प्रश्न। अभव्य तो बांधर एक इंद्रिय करेंगे ना, वो संगी पंचेंद्रिय एक इंद्रिय के उनके यज्ञ उनके लिए वही जघन्य होगा। हाँ देखो देखो, यानी वो परिणाम नहीं हुआ ऐसा नहीं, वो विशिष्ट कर्म का जघन्य नहीं किया उसके बाद कहाँ है, उसको भाव परावर्तन में कहाँ, कर्मों की अवस्था नहीं ले रहे, जीव की अवस्था जीव के भाव की बात है। बिल्कुल भाव परावर्तन कौन करा है, मिथ्या दृष्टि करा है। तो मिथ्या दृष्टि वो करण परिणाम वाला करेगा क्या? तो उसमें नहीं लेना उसको। भाव परावर्तन में वही है जो मिथ्यात्व के योग्य, जो उसके परिणाम हो सकते हैं असंख्यात्व, तो वो करेगा। ये करण लब्धि के अंतिम समय में जो परिणाम हो रहा है वो करने वाला जीव, वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाकी अभी उसका। भाव परावर्तन में उन परिणामों को नहीं लेना है जो करण परिणाम में होते हैं, क्योंकि उसका भाव परावर्तन फिर होगा ही नहीं, एक भी परावर्तन नहीं होगा। अभी यहाँ हम नारकी की बात देख रहे थे, नारकी हमने चार घाती कर्मों का जघन्य एक या दो समय, और जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागर। अपनी अपनी स्थिति समझना। अभी तो सामान्य नारकियों में बात चल रही है, वेदिनी और नाम कर्म के। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल चार समय, क्योंकि वो मध्यम परिणाम में होता है तो चार समय तक होता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। अजघन्य का एक समय नहीं, जघन्य करने के बाद उसने मान लेते अजघन्य करके मर गया है, या दो जघन्य के बीच में किया तभी हो सकता है। 33 सागर यानी उसने जघन्य किया ही नहीं, अन्य अन्य परिणाम किए। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि वो करण लब्धि के अंतिम समय में होता है, सातवें नरक में, यानी सातवें नरक में सम्यक्त्व के सम्मुख है।
तो ये एक समय में सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है।
हाँ, करण लब्धि का अंतिम समय जब सम्मुख कहते हैं ना, तभी अंतिम समय ही लेना। अजघन्य अनुभाग बंध का गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है।
और सम्यक तो प्राप्त कर,
जो जघन्य है वो सारा अजघन्य है।
हाँ, बराबर
है ना। हाँ,
पर यहाँ पे अंतर्मूर्त कैसे होगा? जघन्य करके वो अंत सम्यक में मर गया, और सम्यक में अंतर्मुख लेके मर गया, ऐसे ही लेना पड़ेगा।
फिर सम्यक तो प्राप्त किया दो बार
समय नहीं, तो प्रथम अवसर नहीं होगा तो जघन्य नहीं होगा।
क्यों? वेदक के लिए दो कर्म तो होते हैं।
पर वेदक के लिए विशुद्धि इतनी बड़ी,
दो कर्म होती है, विशुद्धि तो होती है, दो कर्म हो सकते हैं ना। उत्कृष्ट काल नहीं तो अंतर्मुख कैसे कहेंगे आप? हाँ, ऐसा कह सकते। हाँ, अंतर नहीं करना है हमको, काल देने, बराबर है। और जघन्य ने उसने जघन्य किया, जघन्य किया फिर समय दृष्टि हुआ, तो गोत्र कर्म हमको मूल प्रकृति ही देखना है, नीच गोत्र का नहीं देखना है। उच्च गोत्र बांधता रहा तो उच्च गोत्र का तो अनुभव अजघन्य ही था, अजघन्य था तो वो फिर मर गया। बिल्कुल ऐसा दे सकते हैं, फिर से उसने जघन्य किया।
हाँ।
गोत्र का
सातवें
नरक के नारकी ने गोत्र का निज, सॉरी, गोत्र का जघन्य अनुभाग बंधन निज गोत्र में ही होता है।
हाँ।
सम्यक तो सम्मुख में किया।
हाँ।
समय दृष्टि हुआ।
हाँ।
समय दृष्टि हुआ और फिर हाँ, क्योंकि सम्यक तो कब होता है? लास्ट में हो सकता है उसको, फिर मिथ्यात्व तो में गया। मिथ्यात्व तो में जाने के बाद अंतर्मूर्त में मरेगा, बाद में मरेगा वो। सम्यक में मरता ही नहीं है ना, सातवें नरक का नारकी है, सम्यक में मरता नहीं है। मिथ्यात्व में जाएगा और मिथ्यात्व में जाते ही मरण नहीं होगा ना, सासाधन में मरण हो सकता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व में जाएगा, अंतर्मूर्त रहेगा और फिर मरेगा। ख्याल में आती बात? नहीं, सातवें नरक में उसने अंतर्मूर्त तक समय दृष्टि रहा। हाँ, वह जघन्य का, क्योंकि जघन्य किया उसने सम्यक्त्व के सम्मुख, यानी वो सम्यक्त्व कब प्राप्त किया? आयु के अंत में। ये सम्यक में अंतर्मूर्त रहा, मिथ्या तो में अंतर्मूर्त रहा, फिर मरा। तभी अंतर्मूर्त घटित होगा। उत्कृष्ट काल तो उसने जगन ने किया ही नहीं, तो मिथ्या दृष्टि रहा तो 33 सागर हुआ। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए। पहली पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अजगण्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। और वहाँ गोत्र कर्म का जघन्य, जो पहली से छठी पृथ्वी तक गोत्र कर्म का जघन्य कहाँ होगा? मध्यम परिणाम में। तो उसका जघन्य एक समय भी होगा, एक समय से चार समय तक जघन्य, और अजघन्य एक समय से अपनी अपनी स्थिति। तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल चार समय, और अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अपनी अपनी भवस्थिति प्रमाण कहना चाहिए। कि नारकी की काय स्थिति उसकी भवस्थिति होती है, क्योंकि एक ही भव होता है ना। अभी विशेषार्थ इसी का पढ़ेंगे। सामान्य से नारकियों में और प्रत्येक पृथ्वी में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध के होता है। इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होने से यहाँ चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। फिर अजघन्य तो समझ में आ जाते हैं ना, अजघन्य एक समय से लेकर अपनी अपनी स्थिति समझना। सामान्य नारकियों में और सातवीं पृथ्वी में गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य का अंतर्मुख कहने का कारण यह है कि यहाँ गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध होने के बाद ऐसा जीव कम से कम अंतर्मुख काल तक नियम से नरक में रहता है। ये मिनिमम काल। प्रारंभ की छह पृथ्वियों में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जीव करता है, इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। शेष कथन सुगम है, यानी यहाँ पर भी मध्यम परिणाम वाला कौन लेना है? तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि निज गोत्र को बांधना है ना, उसका जघन्य होता है। हम बात तो मूल प्रकृति कह रहे हैं, परंतु उसमें उत्तर प्रकृति को सोचकर हमको उसका स्वामित्व डिराइव करना है। अब हम तीर्यंचों की बात देखें। तीर्यंचों में अब घाती कर्म का जघन्य कहाँ होगा? तो सर्व विशुद्ध वाले के होगा, हाँ, यानी पंचम गुणस्थानवर्ती वाले को होगा। तो चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है। अब यहाँ गोत्र कर्म का जघन्य कौन करेगा? वो बांध रखने का ही क्वालिफाई करेगा ना, कौन करेगा? तीर्यंचों में जघन्य 19 पेज। सेकंड लाइन 19 पेज की लास्ट में तीर्यंचों की मार्गणा है, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? वही सब पर्याप्त एवं से पर्याप्त साकार जागरूक सर्व विशुद्ध जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर अग्नि का एक बादर वायु का। आप कहेंगे एक इंद्रियों को क्यों लिया? क्योंकि हमें निज गोत्र का जो पंचेंद्रिय करता है, अभी यहाँ तो वो पॉसिबल, यहाँ तो एक इंद्रिय करेगा वो और जघन्य करेगा, एक में एक बात। और दूसरा आप कहेंगे उच्च गोत्र का देखो, वो तो अनंत गुणा हो जाता है, इसलिए निज गोत्र को ही लेना है, यानी अग्निवायु का एक होता है। तो उसके सर्व विशुद्ध तो एक समय से दो समय होगा। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, क्योंकि वो दो पर्याय में गया ही नहीं, और गया तो भी उसने जघन्य किया ही नहीं, है ना। तो अनंत काल
तो वो अनंत काल में आ गया?
न, वो नहीं,
तो नहीं।
वो किसके लिए बताया था? वो मध्यम परिणाम में जो जगन्य होता है उसके लिए किया था। एक इंद्रिय में कहेंगे तो हो जाएगा, असंख्यात लोग के बाद एक इंद्रिय में रहते हुए। देखो साधारण से एक इंद्रिय में रहा, निकालो एक्चुअली वो तो जगन्य का लेना है ना, आगे आगे आने वाला है, आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, आगे अजगण्य का जो उत्कृष्ट काल देखो ना, असंख्यात पेज नंबर 38 पर है। एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय में, और अजगण्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट के समान है। अनुत्कृष्ट समान है एक इंद्रियों में असंख्यात लोग, द्विंद्रियादि में संख्यात हजार वर्ष।
तो ये किसके लिए लेना
है? अजगण्य के लिए।
जी, कौन सी प्रकृति?
वो चार घाती कर्मों की। अभी हम गोत्र कर्म के देखें। उसमें भी अनंत काल देखा। देखो गोत्र कर्म की जो हम देख रहे थे 38 पेज पर, एक इंद्रिय में भी वहां अनंत काल लिया था, और जो असंख्यात लोक प्रमाण हमने काल दिखा था तो उत्कृष्ट के लिए दिखा था। वैसा नहीं लेना है। अग्नि का एक, वायु का एक जगन्य करते हैं, तो अग्नि वायु छोड़कर अन्य पर्याय में भटकने का काल कितना है? तो अनंत काल है, वो यहाँ लेना है। यानी वो परिणाम लौट कर आते वो नहीं लेना, अन्य परे हाँ वो नहीं, वो यहाँ नहीं लेना। अन्य पर्याय में घुमा, जैसे हम उत्कृष्ट में संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट करता है, और वो एक इंद्रिय में गया तो लगातार अनुत्कृष्ट करेगा। ऐसे यहाँ जगन्य करने वाला कौन है? अग्नि का एक वायु का एक, अग्नि और वायु छोड़कर बाकी पर्याय में घुमा, अकेले वनस्पति का एक में भी रहा तो अनंत काल हो जाता है। देखो अभी यहाँ आते हैं, यानी वहाँ वो परिणामों की बात लौट कर वो बात नहीं लेना है यहाँ पर। तीर्यंचों में जो हम देख रहे थे, फिर से पढ़ते, चार घाती कर्मों का भी अजगण्य अनुभाग बंध का जगन्य किसने किया था? हाँ, उत्कृष्ट काल अनंत काल, पर अनंत काल में कितना करेगा वो?
अनंत काल में
उसने वो किया ही नहीं, उसने वो तो उसने समय दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, तो कायम तीरंच में ही रहा, वो अनंत काल है। नहीं, एक इंद्रिय पर्याय में रहा, पंचेंद्रिय हुआ, तो फिर वो पांचों गुणसार में गया ही नहीं ना, यानी वो समय दृष्टि नहीं रहा, समय दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, तो तीर्यंच में लगातार रहने का काल अनंत काल है। यहाँ अंतर नहीं देखना है हमको, अंतर के लिए फिर उसको अर्धपुद्गल कहना पड़ता है, इसलिए उसको यहाँ केवल काल देखना है। उसने कभी जगन्य किया ही नहीं, गया ही नहीं, वो समय को प्राप्त ही नहीं किया और तीर्यंच में रहा, तो अनंत काल कहना। गोत्र कर्म में भी देखा क्या था, जगन्य कहाँ होता है? अग्नि वायु, और अग्नि का एक वायु छोड़कर अन्य पर्याय में घूमा तो अनंत काल तक घूमा। अजगन्य के लिए जो अनंत काल है, तो गोत्र के लिए अन्य पर्यायों में घूमा, और चार घाती के लिए मिथ्या दृष्टि रहा, तीरंच में रहा इतने काल तक, वेदनी और नाम कर्म का भंग ऊह के समान है, यानी मध्यम एक से चार समय होता है, और अजगण्य के लिए असंख्यात लोक होता है, क्योंकि मध्यम परिणाम को ही करता है, असंख्यात लोक, और उसका विशेषार्थ में बताया कि सूक्ष्म में रहने का उत्कृष्ट काल ऐसा उन्होंने वहां बताया था। इसी प्रकार अभव्य और असंगी जीवों में जानना चाहिए। तो अभव्य में जो सर्व विशुद्ध वाला देखा था घाती कर्मों के लिए, वो द्रव्य संयमी को लिया था। हाँ, और असंगी में बांदर एक इंद्रियों के जगह नहीं होगा। क्या वेदी ने
नहीं
घाती कर्मों में जरा देख लो जगन्य का स्वामित्व असंगी में किसको लिया? असंगी में एक इंद्रियों के समान भंग बताया। गोत्र का एक इंद्रिय के समान है, बाकी असंगी पंचेंद्रिय में। ये तो एक इंद्रिय के समान है, केवल गोत्र का था। गोत्र के लिए एक इंद्रिय के समान था। पर वेदनीय नाम कर्म के लिए भी ओघ में जो देखा था ना,
नहीं
देखो देखो, और जगन्य का उत्कृष्ट काल कितना था तो असंख्यात लोक ही था, वही यहाँ लेना। ओघ में वेदनीय का जो और जगन्य का लगातार काल असंख्यात लोक देखा था, वैसे यहाँ पर भी लेना। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में, तिर्यंच मार्गणा में पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की बात चल रही, चार घाती कर्मों का भंग उत्कृष्ट के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में चार घाती कर्मों का जघन्य है तो एक से दो समय है, और अजघन्य ने पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में रहने का लगातार काल लेना है, तो पृथक पूर्व कोटि पृथक तौर तीन पल्ले होगा। पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले। उत्कृष्ट के समान बताया ना उन्होंने, यानी उसने जघन्य किया ही नहीं। जघन्य कौन करता है? सर्व विशुद्ध। तो उसकी काय स्थिति कितनी है? वो अजघन्य रहा। अब 37 पेज पर वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच है तो यहाँ ना वो सातवें नरक का नारके ना बादर अग्नि का एक वायु का एक है, तो गोत्र कर्म को यहीं पर लिया। तो इनके जघन्य अनुभाग बंद का अजघन्य लिखा, उसको जघन्य करो ऊपर पहली लाइन में, वो अजघन्य लिखा है उसको जघन्य करो। हाँ, जघन्य होना चाहिए, पहले जघन्य बाद में अजघन्य को बताते हैं, और उसका वर्णन पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो वेदनीय नाम और गोत्र कर्म जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय, यानी वो जघन्य की बात थी। अब यहाँ अजघन्य करो नीचे। और अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल काय स्थिति प्रमाण, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में रहने का पूर्व कोटि पृथक तौर तीन पल्ले। आगे बढ़े। पंचेन ये तिरियन च अपर्याप्तकों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दोष है, उनके योग्य विशुद्धि है सर्व विशुद्धि वाला। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तो तेजल उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त क्यों कहा? लगातार अपर्याप्त 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 की आयु अंतर्मूर्त में हो, क्योंकि पंचेंद्र तीरियंच अपर्याप्त है तो संगी और असंगी के आठ आठ भोग हो सकते हैं। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल चार समय है क्योंकि मध्यम परिणाम में होता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि उसमें काय स्थिति उनकी अंतर्मूर्त की। इसी प्रकार सब अपर्याप्त कौमा लेना त्रस और स्थावर तथा उनके तथा सूक्ष्म और उनके अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। उनके पर्याप्त हाँ क्या कहा? सब अपर्याप्त में तो आ ही गए, पंचेंद्रिय अपर्याप्त रस अपर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त सब आ गए। तो सब अपर्याप्त एक मिनट यहाँ वेदिनी नाम और गोत्र की बात चल रही है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त में हो तो घटित हो जाएगा। यहाँ लिखा है सब अपर्याप्त गानं तसानं थावरणं च, यानी ऐसा लेना है सब अपर्याप्त त्रस और स्थावर के सब अपर्याप्त लेना और सूक्ष्म के पर्याप्त लेना। देखो सूम अपर्याप्त गानं च, सूक्ष्म और उनके पर्याप्त नहीं लेना। सूक्ष्म में असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहेगा, सूक्ष्म पर्याप्त में रहने का काल कितना है? अंतर्मूर्त। और नहीं है, देखो ऐसा लेना चाहिए। इसी प्रकार सब अपर्याप्त लिखे ना, उसमें कौन लेना? त्रस अपर्याप्त, स्थावर अपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त तथा सूक्ष्म पर्याप्त, ऐसा होना चाहिए।
मुझे रीजन समझ में नहीं आया क्या?
देखो देखो सभी अपर्याप्त है, कौन कौन अपर्याप्त लेना? त्रस अपर्याप्त। देखो ऐसा करना, यहाँ पूर्ण लिखना, इसी प्रकार सब अपर्याप्त डैश करो, त्रस के आगे भी अपर्याप्त लिखो। नहीं नहीं समझने के लिए लिखना है ना, तो त्रस स्थावर करने से पूरे त्रस हो जाएगी। सब अपर्याप्त का अर्थ क्या? त्रस अपर्याप्त, स्थावर अपर्याप्त। स्थावर यानी सभी काय का गए ना, तथा सूक्ष्म अपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त, उनके के बदले सूक्ष्म पर्याप्त। अने अकेला सूक्ष्म अपर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूल, अकेला सूक्ष्म पर्याप्त में रहने का अंतर्मूल, अने जो मार्गना अंतर्मूर्त वाली उनमें सब में ऐसा ही समझना चाहिए। अंतर्मूर्त सूक्ष्म के लिए पर्याप्त लिखना, ये अपर्याप्त शब्द त्रस स्थावर और सूक्ष्म के लिए है। यानी उनका ऐसा वाक्य होना चाहिए था हिंदी में। इसी प्रकार सब त्रस स्थावर तथा सूक्ष्म अपर्याप्त और सूक्ष्म के पर्याप्त, हमने जो लिखा तो ठीक है। अभी हाँ सबकी काय स्थिति अंतर्मुख फिर से सूक्ष्म पर्याप्त में रहने का काल अंतर मूर्त है बराबर है। हाँ क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के हो गए ना और असंख्यात हो जावे तो अंतर्मूर्त कैसा होगा एक भव अंतर्मूर्त नेचुरली। मैं सूक्ष्म पर्याप्त का अर्थ क्या है पांचों स्थावर का एक के सूक्ष्म हो सकता है उसमें पर्याप्त पर्याप्त भी संख्यात भव हो गए विशेषाक्तिरियंचों में और इनके अवांतर भेदों में। अवांतर भेद ने पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक और पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त उसके सारे सब डिविजन्स काल का विचार स्वामित्व और काय स्थिति को ध्यान में रखकर कर लेना चाहिए वो अभी हमने किया। विशेषता इतनी है कि यहाँ चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध मूल लोग के समान संभव नहीं है इसलिए इनके जगन्य अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण बन जाता है। मूल लोग में गोत्र का तो हमने सात पेंद्र का नारके लिया था यहाँ तो तीरेंच में ही होता ही मूल लोग में चार घाती का क्षपक के लिया था वो भी यहाँ नहीं है इसलिए काय स्थिति में उसको अजगन्य ले लेना। इसी प्रकार यहाँ वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का विचार कर काल ले आना चाहिए उसकी भी बात हमने सोच ली। अब मनुष्य त्रिक में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओग के समान है वो क्षपक के होता है तो एक समय के लिए होता है जघन्य भी उत्कृष्ट में और जघन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है यानी उसमें मनुष्य त्रिक है ना तो यहाँ तो अनादि अनंत नहीं कह सकते क्योंकि मनुष्य में रहने का काल है ना मनुष्य की काय स्थिति लेना पड़ेगा उसने जघन्य किया ही नहीं और जघन्य नहीं रहा तो अपनी अपनी काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक और तीन पल्ले वही तो पूर्व कोटि में भाई पूर्व कोटि के भाव किए हमने कितने मनुष्यों के किए मनुष्यों के किए तो स्त्री वेदी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी फिर एक अपर्याप्त किया और फिर हाँ 24 और 24 48 तो उसमें 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ले बीच में अंतर्मूर्त और ले लेना वो तो मनुष्य सामान्य के होगा मनुष्य पर्याप्तों में लेंगे अपर्याप्त भी नहीं ले सकते। और देखो यहाँ दो अपेक्षा आती है पर्याप्तों में तीनों वेद वाले ले सकते हैं या परमा पर्याप्तों में केवल नपुंसक वेदी और पुरुष वेदी लेते हैं क्योंकि मनुष्य ने क्या अलग मार्ग ना निकाली दो अपेक्षा है उसके अंदर कहीं कहीं तीनों वेद वालों को पर्याप्त उनको लिया और कहीं कहीं पुरुष वेदी नपुंसक वेदी वाले को लिया तीनों वेद लेंगे तो 24 हो जाएगी दो लेंगे तो 15 और तीन पल्ले और तीनों वेद वाले लेंगे तो 23 और तीन पल्ले। स्त्री वेदी में मनुष्यनी में लेना है तो 7 और तीन पल्ले 7 पूर्व कोटि और तीन पल्ले। ये काय स्थिति समझने से वो अपना अपना समझ लेना। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग पंचेंद्रिय तिरियंचों के समान है यानी जगन्य के लिए 1 से 4 समय और अजगन्य के लिए काय स्थिति पंचेंद्रिय तिरियंच में भी ऐसा ही कहा था पूर्व कोटि पृथक और तीन पल्ले वैसे यहाँ पर भी समझना। देवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का काल नारकियों के समान 1 से 2 समय क्योंकि उसका स्वामित्व समय दृष्टि है और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल 1 समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है क्योंकि उसने जघन्य किया ही नहीं। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का वही भंग है और जगन्य के लिए ये तो विशेषता है। इनके जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, ऋतुकोष काल चार समय जगन्य के लिए, और अजगन्य के लिए एक समय से 33 साल। इसी प्रकार सब देवों के जानना चाहिए, किंतु अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल, जगन्य काल तो एक समय बताया, उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, क्योंकि वहाँ सारे समय दृष्टि है, अन्यत्र हम मिथ्या दृष्टि को देखते थे जगन्य करने वाला। अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अपनी अपनी भवस्थिति प्रमाण है। अब विशेषार्थ को इसी को बताएंगे। नारकियों से देवों में दो विशेषताएं हैं। प्रथम तो यह कि देवों में और उनके अवांतर भेदों में गोत्र कर्म का स्वामित्व सामान्य नारकियों के समान न होकर दूसरी पृथ्वी के समान है। हाँ, मध्यम परिणाम तो होते हैं। इसलिए यहाँ गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का काल वेदनी और नाम कर्म के साथ कहा गया है। और दूसरी बात कौन सी, अनुदिश से लेकर आगे गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामित्व सम्य दृष्टि संक्लिष्ट परिणाम वाले जीव को होता है। इसलिए वहाँ वो मध्यम परिणाम वाला एक से चार समय नहीं कह सकते, और इसका जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। इसलिए अनुदिश आदि में गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, शेष कथन सुगम है। जैसे हमने ज्ञान का उत्कृष्ट देखा था, दो समय तक होता है इनके, उसी काल में गोत्र कर्म का जगन्य होगा दो समय तक। ये समझ में आई ना बात, क्योंकि एक ही गुण स्थान है ना उनका, यहाँ पर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरेन्द्रिय जीवों में घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अपने अपने वो सर्व विशुद्ध जो है उसमें पर्याप्त जीवों को लेना है, एक इंद्रिय में कहते समय बादर पर्याप्तों को कहेंगे। और जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय सबके लिए कॉमन, और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट के समान है, ये जो लिखा है तो एकेंद्रिय नहीं, अनंत काल नहीं होता, एकेंद्रियों में अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक होगा। द्विंद्रिय आदि में अपने अपने में, द्विंद्रिय में अलग, तीन्द्रिय में अलग, चतुरेन्द्रिय में संख्यात हजार वर्ष होगा। हमने अभी देखा था ना अनुत्कृष्ट का असंख्यात लोक होता है, अनंत काल नहीं होता। वो अनंत काल हमने जो बताया था अभी, हाँ, तो वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय। पहले गोत्र कर्म की विशेषता बाद में बताएंगे, पहले में पहले जगन्य का बताया। अजगन्य गोत्र में सब विशेषता ही, इसलिए हमें क्यों लिया पता नहीं है, फिर भी वेदनी और नाम के लिए क्या होगा, एक समय से चार समय। और अजगन्य अनुभाग बंध का अनुत्कृष्ट के समान भंग है। अनुत्कृष्ट के समान यानी क्या है, असंख्यात लोक हो जाएगा। इतनी विशेषता है कि एकेंद्रियों में गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, क्योंकि वो बादर अग्नि का एक वायु का एक के सर्व विशुद्धि में होगा। और अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल का, क्योंकि वो बादर अग्नि का एक वायु का एक छोड़कर अन्य पर्याय में घूमा। विशेषण ये जो तीनों को एक साथ जो लिया है, क्योंकि ऊपर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेन्द्रिय की भी बात थी, इसलिए ये सबको इकट्ठा ले लिया, यानी अपना अपना अनुत्कृष्ट के समान बता दिया। अपना अपना अनुत्कृष्ट क्या है, तो एक इंद्रिय में असंख्यात लोग, द्विंद्रिय में संख्यात हजार, तीन इंद्रिय में संख्यात हजार वर्ष, चतुर इंद्रिय में ये ऊपर पहली लाइन में चतुरिंद्रय हुआ है, चतुरिंद्रिय करना, इंद्री इसको वेलांती देना। ये समझ में आई बात? इसलिए यहाँ गोत्र कर्म को अलग ले गया, एक इंद्रियों के लिए केवल, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय के लिए नहीं। देखो विशेष हाथ पढ़ते, एक इंद्रियों में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध, बादर अग्नि का एक और बादर वायु का एक जीव पर्याप्त अवस्था में पूर्ण विशुद्ध होकर करते हैं, इससे इसके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय कहा। ऐसे ही एक इंद्रिय आदि जीव चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध होकर करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध का भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, शेष कथन सुगम है। पन चार घाती कर्मों का जघन्य करने के लिए कोई भी हो सकता है, जो अग्नि का एक वायु का एक होने की जरूरत नहीं है, तो सूक्ष्म में गया तो जघन्य नहीं करेगा, इसलिए असंख्यात लोग। और गोत्र के लिए बादर अग्नि का एक वायु का एक करेगा, अब बादर वायु का एक अग्नि का एक छोड़कर अन्य पर्याय के लिए उनके अनंत काल करते। पंचेंद्रिय द्विक और त्रस द्विक में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, क्योंकि चार घाती का और गोत्र का एक समय होगा ना, चार घाती का तो क्षपक में होगा, गोत्र का तो नारकी के होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय और त्रस में वो हो जाएगा तो एक समय हो जाता है, वेदिनी और नाम का तो एक से चार समय हो जाता है। इतनी विशेषता है, और जघन्य का अनुभाग भी ओके समान है, जघन्य काल एक समय है, इतनी विशेषता है कि काय स्थिति कहनी चाहिए, यानी अजघन्य का उत्कृष्ट काल कहने के लिए काय स्थिति, तो पंचेंद्रिय की कितनी होती है, तो पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागर, और त्रस इन जनरल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर, और अकेले पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए 100 सागर पृथक, और त्रस पर्याप्तों के लिए 2000 सागर। फिर से पंचेंद्रिय द्विक लिखे है, तो पंचेंद्रियों के लिए सामान्य से पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागर, पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए 100 सागर पृथक, अभी त्रस इन जनरल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर, और त्रस पर्याप्त 2000 सागर। मैंने काय स्थिति समझना अपने अपने, बाकी अजगण्य का मिनिमम काल तो एक समय होता है इनका। सात कर्म अजगण्य का एक समय किसमें होगा, वेदिनी नाम में होगा, और पंचेंद्रियों में चार घाती का अजगण्य कहाँ होगा, जब शपक नहीं होगा तो सारा पंचेंद्रियों में रहते हुए अजगण्य नहीं होगा, तो उसमें उसकी काय स्थिति कहनी पड़ेगी, वहां उसका एक समय नहीं घटित होगा अजगण्य का, अजगण्य का एक समय वेदिनी नाम में हो जाएगा, परंतु चार घाती का अजगण्य है एक समय नहीं होगा। जैसे हम देखो देखो ओघ में क्या देखते हैं, चार घाती का अजगण्य अनादि से हो रहा था, अब यहाँ चार घाती का अजगण्य कब होगा, जब से पंचेंद्रिय में आया तब से होगा, तो पूरी काय स्थिति लेना, मिनिमम अंतर्मूर्त होगा दो बार श्रेणी चलने की अपेक्षा से, देखो अजगण्य की बात है ना, तो अजगण्य के लिए वेदनीय का वेदनीय नाम का अजघन्य एक समय, चार घाती का अजघन्य अंतर्मुख दो बार श्रेणी, वो तो बताइए ना काय स्थिति कहनी चाहिए, वो जगह की उत्कृष्ट काय स्थिति अब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, केवल वनस्पति का एक कहते हैं तो उसमें निगोद भी आते हैं, इसलिए अकेला बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर को लिया और निगोद जीवों में ये भी इन जनरल लिया, बाकी तो सूक्ष्म भी होते हैं बादर भी होते हैं पृथ्वी का एक में, पर वनस्पति का एक में सूक्ष्म में केवल निगोद ही होते हैं, तो यहाँ पहले बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर वाले भी है और निगोद लेने से बादर और सूक्ष्म सब आ गए इन जीवों में, यहाँ अग्नि का एक वायु का एक को छोड़ दिया है। सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का काल पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है। हाँ क्या एक समय से दो समय किसका होगा? चार घाती का होगा और वेदिनी नाम गोत्र का एक से चार समय होगा, और अजघन्य अनुभाग बंध का काल सबका अपने अपने अनुत्कृष्ट के समान। बादल निगोद सूक्ष्म निगोद में रहने का काल है, असंख्यात लोग ही होगा ना। हाँ परंतु पृथ्वी कायिकों में भी सूक्ष्म में हरेक के अपने अपने सूक्ष्म जो है, केवल बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर में कैसे कहेंगे? नहीं नहीं काय स्थिति लेना, देखो निकालो पेज नंबर अनुत्कृष्ट निकालो ना, पृथ्वी का एक जल का एक पेज नंबर निकालो, एक केंद्रीय में बादर, एक केंद्रीय में पृथ्वी कायिक वगैरह, कर्म स्थिति लेना है बादर वनस्पति कायिकों में, परंतु मूल ना ना ना, इसी प्रकार बादर पृथ्वी कायिक वगैरह, बादर अलग लिया हमने, पृथ्वी कायिक इन जनरल कहाँ लिया? ऊपर लिया, असंख्यात लोक लिया, सामान्य में असंख्यात लोक लेना, पण बादर वनस्पति का एक प्रत्येक ने क्या लेना? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक ना संख्या हजार फिर से
बादल वनस्पति का एक सामान्य देखिए तो उसमें उसकी काय स्थिति सत्रह थोड़ा सामान्य
नहीं 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 पर्याप्त की बात करें आप। कर्म स्थिति प्रमाण, कर्म स्थिति प्रमाण, बादर उसमें कर्म स्थिति होगा। देखो फिर से पृथ्वी का एक जल का एक और निगोद में अगर लेंगे तो असंख्यात लोगों, देखो देखो पृथ्वी कायिक में असंख्यात लोक होगा अनुत्कृष्ट के समान, बताए ना अजघन्य अनुभाग बंध का, यानी पृथ्वी कायिक में असंख्यात लोक क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में गया। जल कायिक में अजघन्य असंख्यात लोक क्यों? सूक्ष्म जल कायिक में गया। निगोद में क्यों? तो सूक्ष्म निगोद में गया। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर में कैसे लेना है, यहाँ तो सूक्ष्म नहीं कह सकते, अपर्याप्त तो नहीं गया, तो बादर में रहने का काल जो है कर्मस्थिति प्रमाण, यानी उसने वो जगन्य किया ही नहीं, अजगन्य ही रहा, यानी उसकी काय स्थिति जो है वो लेना वहाँ पर कर्मस्थिति। इतने बादर वनस्पति कायिक में कर्म स्थिति लेना। और जल कायिक आदि में असंख्यात लोक लेना। वो जघन्य के लिए एक समय और दो समय तो ठीक है, और वेदिनी नाम गोत्र के लिए चार समय, एक से चार समय, और जघन्य के तो अनुत्कृष्ट के समान बताया। अब अग्निकायिक की बात करेंगे। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों में इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म का भंग घाती कर्मों के समान करना चाहिए, यानी एक से दो समय करेंगे, क्योंकि सर्व विशुद्ध वाले के ये होगा, एक समय से दो समय। और वो अजगन्य किया उसने तो असंख्यात लोग होता ही है ना, विशेषार्थ अभी इसी का पंचेन्द्र द्वीप और त्रसद्वीप की काय स्थिति का निर्देश उत्कृष्ट काल का निर्देश करते समय कराए हैं, वो हमने अभी अभी देखा है ना, उसे जानकर यहाँ सात कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल कहना चाहिए, यानी उसने जगन्य किया ही नहीं ऐसा लेना, उसमें उसकी काय स्थिति लेना। एक इंद्रियों में गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव सर्व विशुद्ध होकर करते हैं, इसलिए अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों में गोत्र कर्म का काल घाती कर्मों के साथ कहा है, यानी एक या दो समय। जघन्य का, जघन्य का काल, किंतु पृथ्वी का एक आदि में परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले जीव करते हैं, किसका गोत्र का जघन्य, इसलिए इनके गोत्र कर्म का अनुभाग बंध का काल वेदिनी और नाम कर्म के साथ कहा है, जघन्य का एक से चार समय, शेष कथन सुगम है। यहाँ तक समझ में आई बात? पांच मनोयोगी और पांच वचन योगी जीवों में, अभी यहाँ पर क्षपक भी है, यहाँ गोत्र कर्म का वो नारकी भी है, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वो चार घाती में क्षपक लेना और गोत्र के लिए सातवें नरक में लेना सम्यक के सन्मुख, और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि योग पलटने की अपेक्षा करेंगे। यानी क्षपक की अपेक्षा जब हम जघन्य लेते हैं तो अजघन्य तो हम अनादि से लेते थे उग में, परंतु यहाँ एक समय जो है योग का काल, योग पलटने की अपेक्षा। या ऐसा भी होगा ना, विशिष्ट योग में आया, मन योग में अजगन्य किया और मर गया, मन योग बलट कर उसको कर्मण का योग हुआ, मरण में भी हो सकता है ना, एक ही समय घटित हो सकता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वही योग का काल अंतर्मूर्त होता है। वेदनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय, जैसे अन्यत्र होता है वैसे यहाँ पर भी लेना। अजगण्य अनुभाग बंध काल, जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यानी योग का काल। क्योंकि मानव योगी वचन योगी लिखे ना, यानी उनके तो पलटते रहेंगे हमेशा। काय योगी में हमको सोचना पड़ेगा, काय योगी जीव में देखो आई बात, सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है। यानी जघन्य का तो हमने एक समय लेते हैं चार घाती कर्मों में, एक समय होगा जघन्य का काल, और गोत्र का वही सातवें नरक के नारकी में होगा। अजघन्य का वो जो अनादि अनंत वगैरह बताया उसके बाद बताएंगे, अभी इतनी विशेषता है चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। एक समय क्योंकि यहाँ तो योग पलटने की अपेक्षा एक समय ले लिया, यानी मनोयोग से कायोग में आया और एक समय में मर गया। नहीं, मर गया तो कायोग का कायोग रहेगा। नहीं, देखो देखो, और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल तो हम तो यहाँ एक समय क्यों लिया? नहीं, देखो, इतनी विशेषता है कि चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के वो जघन्य अनुभाग बंध का, ये जरा सोचेंगे ना। देखो दसवें गुण स्थान में काय योग हुआ, एक समय के लिए अजघन्य किया, फिर अंतिम समय में जघन्य किया, फिर ग्यारहवें में उसका काय योग पूरा हुआ, दसवें के उपांत समय में उसका काय योग शुरू हुआ। यानी एक समय कैसे, दसवें के उपांत समय में काय योग चालू हुआ। उपांत समय में तो अजगण्य था ना, वो तो कैसे भी होगा। हाँ, तो हमने क्या कहा, दसवें के उपांत समय में काय योग शुरू हुआ,
वो
कहीं पर भी उपशम श्रेणी में अंतिम समय में। अंतिम समय में दसवें के, हाँ कायोग शुरू, तो एक समय घटित होता है। उत्कृष्ट काल तो अनंत काल समझते ना, कायोग में रहा यानी एक इंद्रिय में चला गया, तो कायोग का काल है वो। इसी प्रकार नपुसक वेदी जीवों में जानना चाहिए, नपुसक वेदी में गोत्र कर्म की भी बात घटित होती है और नपुसक वेदी में चार घाती कर्म की भी बात शपक में घटित होती है, उसमें ऐसा ही समझना। विशेषार्थ, काय योगी जीवों में एकेंद्रियों की मुख्यता है और उनकी काय स्थिति का काल अनंत काल है, इसलिए इनमें चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के अजगण्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल अनंत काल कहा है, परंतु इनमें वेदनीय और नाम कर्म का अजगण्य अनुभाग बंध असंख्यात लोक प्रमाण काल तक काय योग के सद्भाव में निरंतर होता रहता है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों की यही काय स्थिति है। वो सूक्ष्म में गया, लगातार अजगण्य होता रहा, ये उसको लेना है। अभी यहाँ सूक्ष्म की बात क्यों दी, देखो क्या कहा, ना ना, पर बादर तो नहीं कर रहा है ना, काय योगी में तो कर रहा है कौन, शपक कर रहे था ना, देखो क्या कहा वे अभी। अच्छा अच्छा, वेदनी के लिए लिया, चार घाती के लिए नहीं लिया है, वेदनी के लिए लिया। चार घाती के लिए तो अनंत काल तो बराबर बताया, पर वेदनीय नाम करने के लिए वो तो अजगण्य का असंख्यात लोक प्रमाण का, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रियों की यही काय स्थिति है, और काय योग में सूक्ष्म एकेंद्रियों के इन कर्मों का जगन्य अनुभाग बंधन नहीं होता। जगन्य नहीं हो रहा ये कह रहे, इसलिए यहाँ इन दोनों कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंधन का उत्कृष्ट का लोक के समान असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम। क्या क्या उसमें बोलना, माइक में बोलना।
बादर पर्याप्त, हम लोग बादर बादर पर्याप्त का उत्कृष्ट से विशुद्धि से संकलेश वाले परिणाम लेते, उसमें मध्य में सभी सूक्ष्मों का परिणाम आता है, तो सूक्ष्म में मध्यम परिणाम में वेदनी और नाम का जगन्य नहीं हो सकता, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि सूक्ष्म में वो मध्यम परिणाम हो ही रहा है तो बादर को भी हो ही रहा है।
वो स्थिति के भेदों की अपेक्षा बीच में सूक्ष्म को लिया था, पर एकेंद्रियों के सभी परिणाम, बादरों के तो सभी परिणाम है, संकलेश से विशुद्धि तक सभी परिणाम
के मध्यम परिणाम है, तो मध्यम परिणाम में भी सूक्ष्म को जगन्य अनुभाग नहीं बनता है, ये थोड़ा कठिन है समझना।
मैंने मध्यम परिणाम नहीं हो गया ऐसा लिया ना, वहाँ पर इतने काल तक मध्यम परिणाम नहीं हुआ।
नहीं, पर यहाँ पे सूक्ष्म में उन्होंने बना,
बार बार उन्होंने वही बताया।
नहीं, सूक्ष्म में जगन्य अनुभाग बनता ही नहीं है, मध्यम परिणाम में भी जगन्य अनुभाग नहीं बनता, ऐसे ही उनका कहना है।
सूक्ष्म में नहीं बनता इतना ही लिया उन्होंने।
तो सूक्ष्म में भी मध्यम परिणाम तो जब आदर के होते हैं वही होते हैं, पर यहाँ पे अनुभाग जगन्य नहीं बनता है, ऐसे उनका कहना है, ऐसे ही समझना पड़ेगा।
ऐसे ही सर्वत्र लिया उन्होंने, सूक्ष्म में रहने का उत्कृष्ट काल ही उन्होंने लिया, इतना ही लिया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, अधिक विशुद्धि भी बादर की है, अधिक संकलेश भी बादर के, इतना ही लेना। ऐसा यहाँ लिया है, वो विशेषार्थ में लिया है, विशेषार्थ में उन्होंने कारण यही बताया है, सूक्ष्म रहने का काल, तो कहीं कहीं वो घटित नहीं होता है, ऐसा है ना। ठीक है, अभी देखेंगे, ये पढ़ लेते हैं। औदारिक कायोगी, औदारिक कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल भी एक समय होना चाहिए था, क्योंकि श्रेणी में औदारिक कायोग है, यानी वो जहन उत्कर्ष एक समय चाहिए, लास्ट टाइम हमने उसको करेक्शन किया था, एक समय होना चाहिए था, क्योंकि इसके लिए रेफरेंस भी हमने 287 पेज का दिया है, निकालो 287 नीचे का पैराग्राफ देखो, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण वगैरह वगैरह, पांच अंतराय के जगन और उत्कृष्ट काल एक समय लिखा है। क्योंकि क्षपक में जगन्य होता है हमको मालूम है, तो एक ही समय होगा, ये तो रेफरेंस सही है, उसका स्वामित्व भी देखो ना, हमने देखा था उदारिक कायोगी का स्वामित्व, पेज नंबर 20, ओग के समान है ना सात कर्मों का, यानी चार घाती कर्मों का जघन्य तो क्षपक के होगा, आयु और वेदनी नाम का तो जैसा जो होता है मध्यम परिणाम वाला, और गोत्र कर्म के लिए तो हमने औदारिक कायोग में अग्नि का एक वायु का एक को लिया था, और यहाँ एक समय ही होना चाहिए, यानी वो स्वामित्व की भी रेफरेंस लिखो, रेफरेंस पेज 20, स्वामित्व यानी जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ऐसा होना चाहिए था। अब अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। अजघन्य का जैसे हमने देखा था ना, जैसे ऊपर हमने मनोयोग वचन योग में देखा था, कायोग शुरू हुआ और बाद में या तो उपशम श्रेणी में अंतिम समय में शुरू हुआ या क्षपक में उपांत समय में कायोग शुरू हुआ, तो एक समय के लिए अजघन्य करके बाद में जघन्य किया। उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष, क्योंकि औदारिक कायोग का ये उत्कृष्ट काल है। हमने देखा ना खर पृथ्वी का एक होते हैं, उसकी ये एक भाव 22,000 वर्ष का है, उसमें से औदारिक मिश्र का काल माइनस कर दिया हमने, मुझे अजीम बड़ा है पड़ेगा, ये औदारिक कायोग कल से कल ही लेंगे शुरू से। नहीं रुकेंगे, इसमें और भी करेक्शंस है। शावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो।
नमो देवता नमः शिवाय 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 नमः श